हाय मालती, मैं आ गया। विनीत ने जैसे ही ये कहा, दिनकर जी और मालती दोनों ने एक दूसरे की ओर देख फिर विनीत की ओर देखा, जिसे अब तक अपनी करनी का एहसास हो गया था कि वो तुरंत बोल पड़ा, हाय दादू। और इसी के साथ वो दिनकर जी के सामने जा बैठा। आपने आराम किया दादू? दवाई ले ली? ये सुन दिनकर जी वे हाँ में सिर हिला दिया। हाँ बेटा, सब कर लिया। अब तो हम मालती के साथ बैठे बातें कर रहे थे। विनीत मालती की ओर देख, अब मैं भी आ गया हूँ दादू, हम सब मिलकर बातें करेंगे। दिनकर जी, जल्दी आ गए काम? विनीत, सब करके आया हूँ दादू, बाकी काम आयांश और दी के आने के बाद ही होंगे। तभी मालती बोल पड़ी, परसों तक वो आ जाएंगे। दिनकर जी, हाँ मेरी भी बात हुई थी, अभी स्विट्जरलैंड में हैं, चारों बच्चे सुकुशल हैं और बस सुकुशल ही घर लौट आए। विनीत, ऐसा ही होगा दादू? मालती, हाँ दादू, वो सब अच्छे से जाएंगे, वो आ जाएंगे और फिर मैं चली जाऊंगी। ये सुनते ही दिनकर जी और विनीत मालती की ओर एकटक देखने लगे, तो मालती मुस्कुराते हुए बोली, डोंट बी सैड, जाना तो पड़ेगा ना, एंड डोंट वरी, फिर आ जाऊंगी। तभी विनीत बोल पड़ा, आना ही होगा। मालती ने उसकी ओर देखा तो वो दिनकर जी की ओर इशारा कर फिर से बोल पड़ा, दादू जब जब बुलाएंगे आना ही पड़ेगा, है ना दादू? दिनकर जी मालती के सिर पर हाथ रख, बिल्कुल। मालती मुस्कुराते हुए, सच में बुलाएंगे दादू आप मुझे? दिनकर जी, हाँ मैं सिर हिलाते हुए, हाँ जरूर बुलाएंगे। अब आप यहाँ से जाओगी बेटा, तब याद तो आएगी ना, वो भी बहुत, तो जल्द फिर बुलाएंगी। वैसे हमारा मन तो कर रहा है हम आपको भी अपने पास रख लें, पर आपके माता पिता दादी माँ ऐसा करने भी नहीं देंगे। वो कहेंगे लालची हो रहे हैं आप दिनकर जी, हमारी एक बेटी तो आपके पास ही होती है, दूसरी बेटी भी लेना चाहते हैं। मालती हंसती, हाउ स्वीट दादू, कहते वो दिनकर जी के सीने से लग गई। कोई भी नहीं दादू, मैं यहाँ नहीं रह सकती तो क्या हुआ, आती जाती तो रहूंगी ना, हम मिलते रहेंगे। दिनकर जी, मालती का सिर चूम, हाँ बेटा। विनीत दोनों की ओर देख मुस्कुरा रहा था, वो मालती की ओर देखते मन ही मन खुद से बोला, दो दिन, बस दो दिन और, आप चली जाएगी अपने घर, अच्छा भी नहीं लग रहा, पर रोकूं किस हक से, अभी रोक भी तो नहीं सकता, अब तक वजह थी, वजह भी ना होगी तो आप भी कहाँ रुकेंगी, चली जाएगी वापस अपने गाजियाबाद और फिर मेरे हिस्से आएगा सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। आयांश, आरवी, वर्तिका चारों होटल से स्विट्जरलैंड घूमने के लिए निकल गए। उनकी शुरुआत ज्यूरिख की खूबसूरत सड़कों से हुई, जहां चारों ने शहर की रौनक और पुराने यूरोपीय अंदाज को करीब से महसूस किया। वहां से फिर वे लुसर्न पहुंचे। झील के किनारे बहती ठंडी हवाएं, लकड़ी का ऐतिहासिक पुल और दूर दिखाई देती बर्फीली चोटियां, जो कि उस जगह को बेहद खूबसूरत बना रही थीं। आरवी आयांश की बाह पकड़ इधर उधर देखते हुए, कितना अच्छा है ना? आयांश ने हामी भरी, हम्म, और दोनों एक दूजे की ओर देख मुस्कुरा दिए। अभी वर्तिका के कंधे पर बाहें डालते हुए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वर्तिका मुस्कुराते हुए, सोच रही हूँ ये जगह कितनी प्यारी है, यहीं बस जाते हैं, अभी भट्ट से बोला, आई एम रेडी। और फिर वर्तिका के कान के पास चेहरा कर धीरे से बोला, दिन भर ठंड में घूमेंगे और रात को ठंड दूर करेंगे। ये सुनते ही वर्तिका ने अभी की ओर देखा तो उसने आई विंक कर दी। तभी वर्तिका ने उसके पेट में कोहनी दे मारी कि वो फट से पीछे हो गया, आउच। अभी की आहसों नयान शार्वी ने फट से पीछे मुड़ उनकी ओर देखा तो अभी पेट को पकड़े हुए था और वर्तिका उसे घूर रही थी। आरवी दोनों की ओर बारी बारी से देखते, क्या हुआ? अभी ने फट से नामे सिर हिलाया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, और बतीसी दिखाते वर्तिका की ओर देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, ये देख अभी भी चल पड़ा, चलो चलो बहुत जगह घूमने जाना है। आरवी मुस्कुरा दी, पागल लोग, कि तभी आयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुमसे कम। ये सुन आरवी उसे कुछ कहती, आयांश उसे लेकर चल पड़ा, चलो तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाता हूँ। आरवी साथ चलते चलते, साथ चलो बस, घूम में खुद ही लूंगी। आयांश उसकी ओर देख, साथ ही तो चल रहा हूँ। आरवी उसकी ओर देख, हमेशा चलना होगा। और इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। फिर उनका सफर इंटरलेकन की ओर बढ़ गया। पहाड़ों के बीच बसी हुई हसीन वादियों ने चारों का दिल जीत लिया। वहां से वे सीधे जंगफ्राउयोग पहुंचे। चारों तरफ फैली हुई सफेद बर्फ, बादलों के ऊपर खड़े होने का एहसास और दूर दूर तक फैली चोटियां देखकर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। अभी आरवी से, होय सोचकर देख, अगर इस जगह से कोई नीचे गिर जाए तो? आरवी उसकी ओर आते, सोचकर क्या देखना है, एक काम कर, तू गिरकर ही देख ले। ये सुन अभी फट से भागकर वर्तिका के पीछे जा छुपा, पागल है क्या? आरवी कमर से हाथ टिकाते हुए, वो तू है, यहाँ से कोई गिरेगा तो सीधा मरेगा ही, सोचकर क्या देखें, वो बचेगा थोड़ी यार, अभी मासूमियत से, यार मैं बस पूछ रहा था, तुम तो धक्का देने ही आ गई। आरवी हंसती, धक्का और तुझे, जाने तू मेरी, अगर कोई तुझे यहाँ से नीचे फेंके ना तो मैं उसके आगे भी हाथ पैर जोड़ तुझे बचा लूंगी, उसे कहूंगी इसे छोड़ दो, चाहे बदले में मुझे नीचे फेंक दो। आरवी ने एक ही सांस में इतना कहा कि तभी आयांश की दमदार और तेज आवाज से वो जगह गूंज उठी, शट अप। ये सुनते ही आरवी के होश उड़ गए,
वो फट से पीछे मुड़ी और उसने थूक गटक लिया। उसके ठीक सामने ही अयांश खड़ा था। अभी वर्तिका भी घबरा गए क्योंकि अयांश आरवी को बुरी तरह घूर रहा था। तभी अयांश गुस्से से अपने कदमों को आरवी की ओर बढ़ाने को हुआ कि डर के मारे आरवी के कदम थोड़ा पीछे की ओर लड़खड़ा गए और इसी के साथ अयांश फिर से चिल्ला उठा, वाइफी, और उसने भागकर आरवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आरवी का सिर अयांश के सीने से जा टकराया। अभी वर्तिका ने एक दूजे की ओर देखा और फिर अयांश आरवी की ओर। आरवी ने चेहरा पीछे कर सहमी नजरों से अयांश की ओर देखा कि तभी अयांश ने उसे बाजुओं से पकड़ा और उसे डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, ध्यान भी है तुम्हें? क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो, आसपास देख भी लिया करो, बोलने से पहले सोच लिया करो। या अयांश गुस्से में आरवी पर चिल्ला रहा था। उसके हाथों की पकड़ आरवी पर कब ज्यादा कस गई उसको भी पता न चला। तभी आरवी की सिसकी निकल गई और वो रुहासी सी आवाज में बोली, दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज। ये सुन अयांश ने उसी वक्त आरवी की बाहों से अपने हाथ हटा लिए और आरवी की कलाई पकड़ उसको वहां से ले जाने लगा। पर तभी वो बोल पड़ी, आई एम सॉरी। अयांश के कदम रुक गए। आरवी उसके सामने आ खड़ी हुई और नम आंखों से, रियली सॉरी, मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिससे आपको ठेस पहुंचे, जिसमें आपसे दूर जाने का जिक्र हो, मजाक में भी नहीं, जानबूझकर नहीं किया, जुबान फिसल गई। मैं ना आपका हाथ पकड़ कर रहूंगी, या फिर जैसे अब आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है वैसे ही पकड़े रखना। आप मेरा ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखते हैं, जब आप साथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, न गिरूंगी न चोट आएगी, प्लीज माफ कर दीजिए। बोलते बोलते आरवी की आंखें छलक उठी कि तभी अयांश ने उसे अपनी ओर खींच अपने सीने से लगा लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आरवी ने भी अपनी बाहें उस पर लपेट ली। ये देखकर अभी वर्तिका दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद, आई एम सॉरी अयांश जी, जो हुआ मेरी वजह से, अभी अयांश से बोल रहा था कि अयांश ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर से नहीं होना चाहिए, ना तुम्हारे बारे में ना किसी और के बारे में, वरना, आगे बोलता अभी फट से बोल पड़ा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ना बातें करेंगे गिरने की, ना ही गिरेंगे, हम ऐसी जगह से चार कदम पीछे ही रहेंगे, प्रॉमिस, मैं आरवी दोनों प्रॉमिस निभाएंगे, है ना आरवी, बोलना। कहते अभी ने आरवी की ओर देखा तो आरवी ने मुंडी हिला दी। अयांश ने आरवी का हाथ पकड़ा, अब चलो यहाँ से, और आरवी को लेकर आगे बढ़ गया। अभी ने उनको जाते देख गहरी सांस ली, बच गया। वर्तिका ने उसकी बांह पर हाथ मारा, शुक्र मनाओ, वरना अयांश के गुस्से की चपेट में आज तो तुम्हारा आरवी दोनों का आना तय था, वो भी बुरा वाला। इस पर अभी कुछ कहता आरवी ने उनको आवाज दे दी और वर्तिका अभी को वहां से खींच कर ले गई। फिर उन्होंने माउंट टिटलिस की रोमांचक केबल कार का आनंद लिया। ग्लेशियर की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके रास्ते और पहाड़ों के बीच बिताया हर पल उन्हें किसी सपने जैसा लग रहा था। शाम ढलते ढलते हुए जिनेवा झील के किनारे पहुंच गए। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर बिखर रही थीं और चारों कुछ देर बिना कुछ कहे वहीं पर ठहरकर उस खूबसूरत नजारे को बस महसूस करते रहे।
देखते ही देखते उनके दो दिन कब बीत गए किसी को एहसास तक नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड की वादियां, झीलें, बर्फीले पहाड़ और साथ बिताए वे अनमोल पल चारों के दिलों में ऐसी याद बन चुके थे जिन्हें समय भी कभी धुंधला नहीं कर सकता था। दो दिन में लगभग बहुत सारा स्विट्जरलैंड घूम चुके थे वो लोग। खूब मस्ती की, एक दूजे को छेड़ा भी खूब, तस्वीरें भी खूब लीं और शॉपिंग भी उन्होंने खूब की। कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आरवी का अपनी फेवरेट जगह घूमने का सपना पूरा हो गया। इस बात को लेकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो खुश थी तो सब खुश थे, स्पेशली अयांश, और उसने अयांश को एंजॉय कराने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कभी परेशान किया तो कभी रोमांस। अब उनके स्विट्जरलैंड से भी जाने का वक्त हो गया था। आरवी अपने कमरे से बाहर निकली और अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर इधर उधर देखते खुद से बड़बड़ाई, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे, मैं अभी आता हूँ बोलकर गए थे, अब तक ना आए, देर भी काफ़ी हो गई, हैं कहाँ ये मिस्टर मेहरा? आरवी अयांश को लेकर परेशान हो रही थी कि तभी उसके पास अभी वर्तिका आ गए। चलें आरवी, चलेंगे तो तब ना जब मिस्टर मेहरा आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ है, आए ही नहीं और ना ही फ़ोन उठा रहे। उनको सब बताकर आरवी फिर अयांश को फ़ोन लगाने लगी, कहाँ हो, रिंग जा रही है, ऐसा तो आप कभी नहीं करते हैं, हमें टेंशन हो रही है। तभी वर्तिका आरवी के कंधे पर हाथ रख, क्या हुआ, सब ठीक है ना आरवी, आई मीन अयांश गुस्से में तो नहीं गया ना? आरवी, नहीं नहीं सब ठीक है, नॉर्मली बोलकर गए थे आता हूँ, और अब, तभी अभी बोल पड़ा, लगता है मिस्टर मेहरा को स्विट्जरलैंड ज़्यादा ही पसंद आ गया है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। ये सुन वर्तिका आरवी ने अभी की ओर देखा तो वो दोनों के कंधे पर बाहें डालते हुए बोला, रिलैक्स गाइज, यहीं होंगे, वो हम जैसे केयरलेस नहीं है, अभी फ्लाइट में भी टाइम है और क्या पता वो हमारा बाहर वेट कर रहे हों। वर्तिका, हाँ आरवी ऐसा हो सकता है। आरवी, अब कीना पते की बात, बोल। आरवी होटल से बाहर की ओर दौड़ पड़ी, अभी वर्तिका भी पीछे पीछे चल दिए। तीनों बाहर आए, तीनों ने अयांश को इधर उधर देखा, ढूंढा भी और पूछा भी, पर वहां पर अयांश ना उन्हें कहीं दिखाई दिया, ना मिला और ना ही किसी से उसके बारे में पता चला। ये देख आरवी बहुत ज्यादा परेशान हो उठी, वो इधर उधर भागते हुए अयांश को ढूंढ रही थी, अब उसको घबराहट हो रही थी। तभी अभी वर्तिका भागे उसके पास चले आए, आरवी मिले? दोनों ने नामे सिर हिला दिया। आरवी,
फोन की ओर इशारा कर, अब तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है गाइस, अपना सिर पकड़ते हुए। कहाँ हैं आप मिस्टर मेहरा? क्रमशः